हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग, कृषा और मलिक तीनों तीसरे पड़ाव को पार करने के लिए कर्नाटक की कॉलर की माइंस में गए हुए थे। उनके साथ युग का फ्रेंड रिदांश ओबेरॉय भी था। जैसे ही उन्होंने वहां रखा किंग का कार्ड उठाया, वहां के बम एक्टिवेट हो गए और लगभग 5 मिनट बाद वहां एक बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरी माइन जलकर खाक हो गई। तीसरा पड़ाव थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था, इसलिए यहाँ पर कोई भी ह्यूमन या आर्टिफिशियल सिक्योरिटी प्लांट नहीं की गई थी। वहाँ की सिक्योरिटी यही थी कि कार्ड निकालने के बाद माइन ब्लास्ट हो जाएगी। सिक्योरिटी कैमराज ना लगे होने की वजह से मिस्टर आदित्य सिंघानिया के सिक्योरिटी एजेंट ब्रेट को कुछ पता नहीं चला था। सुबह के लगभग 8 बजे के करीब आदित्य सिंघानिया सिंघानिया मैंशन में चाय के कप के साथ टीवी स्क्रीन के सामने थे। सुबह चाय पीते हुए न्यूज़ देखना उनकी आदत में था। उनके साथ अमृता भी थी। चैनल चेंज करते हुए उनकी नज़र न्यूज़ चैनल पर आ रही करंट लाइव न्यूज़ पर पड़ी, जिसमें कोलार की माइंस में आग लगने की न्यूज़ थी। न्यूज़ देखते ही उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कौन सी माइंस में आग लगी है और क्यों लगी होगी। उन्होंने गुस्से में रिमोट टीवी स्क्रीन पर फेंक दिया। अमृता ने आदित्य की तरफ बिना किसी भाव के देखा और कंधे उचकाकर कहा, इसका मतलब उसने तीसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। आपको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। इस पोजीशन के लिए उससे बेहतर दावेदार और कोई नहीं हो सकता। आप उसके और कृषा के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि उसे भी इतनी मेहनत ना करनी पड़े और आपको भी अपना परफेक्ट सक्सेसर मिल जाए। अमृता की बात सुनकर आदित्य गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोले, अपनी हद में रहो अमृता, तुम्हारे जरिए तुम्हारी बहन मेरे शांतनु की जिंदगी में पहुंची थी। मैंने उस बात को माफ करके तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पोती की जिंदगी में इंटरफेयर करोगी। आपकी पोती मेरी बहन की बेटी है जिसकी जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी थी। आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। होगा वही होगा जो कृषा चाहती है या अब युग चाहता है। उसने 3 पड़ाव पार कर लिए हैं और देखते ही देखते वो 7ों पड़ावों को पार कर लेगा। आदित्य के इतनी इंसल्ट करने के बावजूद अमृता काफी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी। आदित्य अमृता की बात का कोई जवाब देते तभी अर्जुन सामने से चलकर आया। उसने अमृता और आदित्य की सारी बातें सुन ली थी। सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन ने अपनी राय रखते हुए कहा, मुझे पहले इनके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जब युग ने बेटू को इन सबके लिए किडनैप किया था तब मैंने आपके आदमी विक्रम से इस बारे में पूछा था। उसे इस बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ब्रेड ने बताया कि माइन से निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट होते हैं और उसे 5 मिनट में कोई उसे पार नहीं कर सकता। हो सकता है ब्लास्ट ऐसे ही हुआ हो या किसी और माइन में हुआ है। युग कृषा को इतने बड़े खतरे में क्यों डालेगा? अगर ब्लास्ट तीसरे पड़ाव में हुआ होता तो उसमें जाने वाला शख्स मर चुका होता। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य और अमृता को वहाँ के खतरे के बारे में एहसास हुआ। वो दोनों गुस्से में कृषा के बारे में भूल गए थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो अमृता जल्दी से बोली, कृषा वो ठीक तो होगी ना? अभी इसी वक्त राणा मैंशन में कॉल लगाकर पूछो, मेरी कृषा, उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा? 5 मिनट में वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है। अगर युग उसे वहां लेकर गया था तो वो नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, आदित्य सिंघानिया ने घबरा कर कहा। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और राणा मैंशन में मौजूद हर एक शख्स के मोबाइल पर कॉल कर डाला। अनफॉर्चुनेटली उनका कॉल किसी ने पिक नहीं किया था। इससे उनकी घबराहट बढ़ गई। अर्जुन ने उन्हें समझाते हुए कहा, दादू आप ज्यादा सोच रहे हो, काफी बार ऐसा होता है कि कॉल पिक नहीं किया जाता। वो सब कहीं न कहीं बिजी होंगे। किसी ने कॉल पिक नहीं किया इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें कुछ हो गया है। कैसा इंसान है वो, कृषा को एक मोबाइल तक नहीं दिला सकता। उनसे कॉन्टैक्ट होते ही अमृता तुम सबसे पहले कृषा को लेटेस्ट वर्जन के काफी सारे मोबाइल सेट भेजोगी, आदित्य सिंघानिया ने गुस्से में कहा और फिर वो राणा मैंशन जाने के लिए निकले। अमृता उनके पीछे दौड़ कर आ रही थी। उन्हें अचानक वहां से जाता देख अर्जुन ने पीछे से चिल्ला कर पूछा, लेकिन आप लोग जा कहां रहे हो? राणा मैंशन, तुम्हें इतनी देर में ये भी समझ नहीं आया क्या? अमृता ने चिल्ला कर जवाब दिया। आदित्य सिंघानिया और अमृता जल्द से जल्द राणा मैंशन में पहुंचे। आदित्य सिंघानिया को वहां सब जानते थे, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सब अपने कामों में लगे हुए थे। वहां का माहौल देखकर उन्हें काफी हैरानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ ठीक हो। वहां सब कुछ ठीक ठाक कर अमृता ने आदित्य सिंघानिया से कहा, अर्जुन ठीक ही कह रहा था, वहां किसी और माइन में आग लगी होगी। अगर योग और कृष्णा वहां गए होते तो इन्हें जरूर पता होता। वो ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। आदित्य ने उसकी बात पर हामी भरी। वो बिना किसी से मिले वहां से जाने को हुए, तभी हरलीन ने उन्हें देख लिया। उन्हें देखते ही हरलीन जल्दी से उनके पास आई और कहा, आप यहां तक आए हैं तो फिर बिना मिले क्यों जा रहे हो? आपको भी बहुत मौके मिले हैं बरसों पुरानी दुश्मनी को दूर करने का, लेकिन आज भी आप अपनी जिद पर अड़े हो। मैं अपनी जिद पर नहीं अड़ा हूँ, तुम्हारा बाप अपनी जिद को लेकर बैठा है और मुझे कुछ ठीक नहीं करना है। मैं बस यहाँ कृष्णा को लेखने आया था, आदित्य सिंघानिया ने रूखे तरीके से जवाब दिया। हर्षवर्धन राणा ने उनकी बात सुन ली थी, क्योंकि वो भी आसपास ही थे। उन्होंने वहीं अपनी जगह से खड़े होकर तेज आवाज में कहा, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी पोती यहाँ पर नहीं रहती है। योग अपने विला में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहता है। हर्षवर्धन की बात सुनकर आदित्य और अमृता के चेहरे पर फिर से परेशानी के भाव थे। हरलीन ने उनकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, आप दोनों परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वरना आप इतनी सुबह कृष्णा को देखने के लिए तो यहाँ नहीं आते। अमृता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जहाँ तीसरा पड़ाव बनाया गया है वहाँ आग लगने की न्यूज आ रही है। आसपास और भी माइंस हैं, वहाँ ब्लास्ट हुआ है तो हमें लगा कि आसपास किसी और माइन में ब्लास्ट हुआ होगा। वहाँ तो ब्लास्ट तभी हो सकता है ना जब। अमृता हरलीन को सब बता रही थी, तभी हर्षवर्धन राणा ने बीच में बोलते हुए कहा, जब कोई उस पड़ाव में जाकर वहां मौजूद किसी चीज को हासिल कर ले, इसका मतलब युग ने तीसरा पड़ाव भी पार कर दिया है। लेकिन ये कब हुआ, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? हर बार तो कोई भी पड़ाव पार करते ही उसका कॉल सबसे पहले आता है। बोलते हुए उनके चेहरे पर पहले खुशी के भाव थे, जो अब हैरानी में बदल गए थे। हरलीन ने उनकी तरफ देखकर कहा, बात कुछ और है जाडी जी, वरना आदि अंकल इतनी सुबह यहाँ तो बिल्कुल नहीं आते। बोलते हुए उसने आदित्य सिंघानिया की तरफ देखा। आदित्य सिंघानिया ने परेशान स्वर में कहा, एक्चुअली तीसरा पड़ाव जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि उसमें जाने वाला इंसान कभी बाहर आ ही ना सके। वहाँ ब्लास्ट होने का मतलब है कि वो अब इस दुनिया में। बोलते हुए आदित्य सिंघानिया रुक गए। उनके शब्द भारी होने लगे और कदम लड़खड़ाने लगे थे, तभी अमृता और हरलीन ने उन्हें संभाला। उनकी बातें सुनकर हर्षवर्धन ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, युग मेरा पोता है, वो हार ही नहीं सकता। हरलीन, तुम युग को कॉल करो, वो कभी तुम्हारा कॉल इग्नोर नहीं करता है। हरलीन ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद वो सब लिविंग रूम में बैठे थे और हरलीन युग को कॉल ट्राई कर रही थी। युग के मोबाइल पर रिंग तो जा रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। इससे हरलीन की घबराहट बढ़ गई, उसके साथ बाकी सब भी घबरा गए थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
युग और कृष्णा के मिसिंग होने की बात उनके घर वालों को पता चल चुकी थी। हरलीन ने युग को बहुत बार कॉल किया, युग उसका कॉल एक बार में ही पिक कर लेता था, फिर चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो। हरलीन के काफी बार कॉल करने के बाद भी जब युग ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने हर्षवर्धन की तरफ देखकर धीरे से कहा, ऐसा बहुत कम चांस में होता है कि वो कॉल रिसीव ना करे, युग के विला में कॉल लगाकर देखती हूँ। हरलीन ने फिर युग के घर पर कॉल किया, जहां उसे ये पता चला कि वो कल शाम से ही घर पर नहीं है। हरलीन ने जब बाकी लोगों को ये बात बताई तो वो समझ गए थे कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ होगा। क्या सब कुछ इतना मुश्किल बनाना जरूरी था क्या? अरे क्या हो जाता जो युग माफिया किंग बन जाता? वो ये पोजीशन डिजर्व करता है। तुम्हारा बेटा शांतनु और कृतिका भी पहले यही चाहते थे, पर बाद में उनके मन में लालच आ गया तो उन्होंने सातों पड़ावों के पासवर्ड अपनी बेटी के हिसाब से सेट कर दिए। हर्षवर्धन राणा ने आदित्य सिंघानिया की तरफ देखकर गुस्से में कहा। उन्हें भी अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उनकी वजह से कृष्णा की जान पर बनाई थी। आदित्य सिंघानिया नम आंखों से बोले, इसमें मेरी ही गलती थी, मुझे अर्जुन की बात मान लेनी चाहिए थी। जब कृष्णा इन सबसे दूर रहना चाहती थी तो मैं क्यों सब पड़ावों के पासवर्ड नहीं बदले? युग और कृष्णा की फैमिली के बीच इतने सालों की जो दरार थी वो उन दोनों के मुसीबत में आने की बात सुनकर अब धीरे धीरे भर रही थी। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ युग और कृष्णा की फिक्र हो रही थी, ना कि किसी भी और चीज की। कोलार के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर युग मलिक के साथ था। युग बाहर लगी बेंच पर बैठा था, उसकी नजरें झुकी हुई थी और आंखों में कोई भाव नहीं था। वहीं मलिक उसके पास में खड़ा था। रिदांश का काम हो जाने के बाद युग ने उसे वहां से भेज दिया था। वैसे भी रिदांश की बहन की शादी थी और वो युग के लिए सब कुछ बीच में छोड़कर आया था। युग पिछले एक घंटे से वहां पर था। उसे पेशेंस नहीं हो रहा था, तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मलिक की तरफ देखकर सर्द लहजे में बोला, पिछले दो घंटे से मैं बाहर निकलने का वेट कर रहा हूँ, अब तक वो आ क्यों नहीं रहे? मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मलिक ने युग को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो कृषा के कमरे में घुस गया था। उसे वहां देखते ही डॉक्टर ने कहा, आपको बाहर इंतजार करना होगा। लेकिन मुझे नहीं करना है, पिछले दो घंटे से आप इसके साथ रूम में हो और अभी तक इसे होश नहीं आया है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। युग गुस्से में उन पर चिल्लाया, देखिए सर, हम जानते हैं कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, आपकी हरकतों से दिख भी रहा है, लेकिन इन्हें होश नहीं आ रहा क्योंकि ये डर के मारे बेहोश हुई थी। इनका पैर भी चल गया है, शुक्र वनाय की चोट ज्यादा गहरी नहीं है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम बस उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। इनके सारे टेस्ट करने होंगे, कहीं कोई सीरियस? डॉक्टर युग को समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी युग कृषा के पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखा। माइन से बाहर निकलते वक्त कृषा गिर गई थी, इस वजह से ब्लास्ट की एक चिंगारी उसके पैर तक पहुंच गई थी और उसका पैर थोड़ा जल गया था। डर के मारे कृषा बेहोश हो गई थी। युग ने रिदांश को तो भेज दिया था, उसके बाद वो कृषा को लेकर पास ही के हॉस्पिटल में आ गए थे और तब से यहीं पर थे। युग ने कृषा को अपनी गोद में उठाया और डॉक्टर की तरफ देखकर सर्द निगाहों से कहा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, बेवजह मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। डॉक्टर और उनकी टीम ने युग को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कृषा को लेकर वहां से बाहर निकल गया। मलिक भी देखकर हैरान था कि युग कृषा के होश में आए बिना ही उसे बाहर ले आया था। मुझे अभी मुंबई के लिए निकलना है, मामू को बोलना हॉस्पिटल खाली करवा दे, मुझे वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, युग ने सख्त आवाज में कहा और फिर कृषा के साथ बाहर आ गया। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और उन्होंने तुरंत कर्नाटक से मुंबई की फ्लाइट ली। लगभग 3 घंटे बाद युग कृषा के साथ मानव के हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। उसने इस बीच अपना मोबाइल एक बार भी चेक नहीं किया था। उनके घर वाले ये सोचकर परेशान हो गए थे कि युग और कृषा की ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। वहीं युग इस बात को लेकर परेशान था कि अब तक कृषा को होश क्यों नहीं आया है। हर्षवर्धन राणा और आदित्य सिंघानिया ने अपनी अपनी तरफ से आदमियों को लगा दिया था ताकि वो युग और कृषा को ढूंढ सकें। बाहर सिर दयालु, क्या लगता है कृषा को क्या हुआ होगा? चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, आपकी इच्छा के मुताबिक एक बड़ा पार्ट दिया है।